दोपहर का वक्त था। आर्यन का घर हमेशा की तरह शांति से भरा हुआ था। हॉल में दादी रत्ना देवी आराम कुर्सी पर बैठी थीं। उनके पास ही बुआ शकुंतला अखबार पढ़ रही थी। बहन रम्या और भाई विशाल आपस में फोन्स पर किसी शो को लेकर बहस कर रहे थे। नौकरानी मधु किचन से चाय पानी लाने ले जाने में व्यस्त थी। इसी बीच गेट पर अचानक गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। सबने हैरानी से खिड़की से झाँका। बाहर एक चमचमाती कार और उसके पीछे ड्राइवर ने कई बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्स उतारने शुरू किए। दरवाज़ा खुला और अंदर आई अदिति, आज बिल्कुल नए रूप में। उसने ट्रेडिशनल लाल सुनहरी बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी, गहनों की हल्की सी चमक और हाथों में मिठाई का बड़ा सा डिब्बा। उसके पीछे उसके माता पिता भी उतरे, रात से ठाट बाट और गरिमा के साथ। सबकी नज़रें ठिठक गईं। रम्या और विशाल तो हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बुआ शकुंतला ने धीरे से चश्मा उतारा और फुसफुसाई, अरे ये तो वही अदिति है ना, आर्यन की फ्रेंड। रत्ना देवी ने भौहें चढ़ाईं, फ्रेंड? इतना ठाट बाट के साथ फ्रेंड मिलने आती है क्या? श्यामली, जो वहीं पास में बैठी थी, का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी आंखों में झुंझलाहट और हैरानी साफ छलक रही थी। अदिति मुस्कुराती हुई आगे आई और हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। नमस्ते दादी जी, नमस्ते बुआ जी और सबको। उसकी आवाज़ में एक आत्मविश्वास था। उसके पिता ने आगे बढ़कर कहा, हम आपका परिचय करवा दें। मैं राजेश मिश्रा और ये मेरी पत्नी कविता। हम लोग आज यहाँ एक खास वजह से आए हैं। घर के लोग अब और भी उत्सुक हो गए। आर्यन, जो ऊपर से नीचे उतर रहा था, सीढ़ियों पर ही ठिठक गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अदिति अपने माँ बाप के साथ उसके घर और इतने गिफ्ट्स लेकर। उससे पहले कि कोई कुछ पूछता, अदिति के पिता ने साफ साफ बात रख दी, हम अपनी बेटी अदिति के लिए आपके आर्यन का रिश्ता मांगने आई हैं। पूरा घर जैसे सन रह गया। रत्ना देवी ने कुर्सी से उठते हुए अदिति और उसके पिता को गौर से देखा। उनके चेहरे पर अचानक चमक आ गई। अरे आप तो वही मिश्रा साहब हैं ना, शहर के बड़े उद्योगपति, और अदिति आपकी बेटी। अदिति ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। बुआ शकुंतला तुरंत बोली, हाय राम, इतनी नामी खानदानी लड़की और हमारी बहू बनना चाहती है। दादी जी, ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। रम्या और विशाल तो खुशी से उछल पड़े, वाह भाभी कहकर हंस दिए। श्यामली का चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। उसकी उम्मीदें और सपने जैसे पल भर में ध्वस्त हो गए। उसने गुस्से से अदिति की ओर देखा, लेकिन अदिति ने जैसे उसे देखा ही नहीं। आर्यन वहीं सीढ़ियों पर खड़ा था, हक्का बक्का, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। दादी रत्ना देवी ने बिना देर किए मुस्कुराकर हामी भर दी, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। अदिति जैसे संस्कारी और बड़े घराने की लड़की अगर हमारी बहू बनना चाहती है तो हमें और क्या चाहिए, ये रिश्ता हमें मंजूर है। बुआ शकुंतला ने भी हामी भरी, हाँ हाँ बिल्कुल। हॉल में हलचल बढ़ गई। नौकरानी मधु मिठाई की ट्रे सजाने लगी। सब खुश थे सिवाय आर्यन और श्यामली के। आर्यन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने नीचे खड़े अदिति की ओर देखा। उसकी आंखों में वही चमक थी, वही अनकहा संदेश। कहा था ना, तुम्हें पा ही लूंगी, तुम कितनी भी दूर भागो, अब तुम मेरे हो। और सीन यहीं थम गया, खुशियों और सदमे के मिले जुले रंगों के बीच।